लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
फ्रेटेल्ली सोरेल्ले बोनजोर्नो। कंटिन्यूएरेमो ला स्पिगाजोने देला लेटेरा दी सान पाओलो आई गालाती।
भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। मेरे द्वारा इस पत्र पर दी जा रही व्याख्या जो गलाती समुदाय की उत्पन्न हुई गंभीर समस्या पर जिक्र है, अपने में कोई नई चीज नहीं है। यह ईश वचन का भाग है क्योंकि हम इसे धर्म ग्रंथ में पाते हैं। ये सारी चीजें किसी के द्वारा खोज की गई ऐसा नहीं है। यह उस समय घटित हुई और उसकी पुनरावृत्ति कहीं भी हो सकती है और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। संत पापा ने कहा कि यह ईश वचन गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र पर एक धर्म शिक्षा है, कोई दूसरी चीज नहीं। हमें सदैव इसे याद रखने की जरूरत है। संत पापा ने कहा, हमने अपने विगत धर्म शिक्षा माला में इस बात को देखा कि गलातियों के प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय जिन्होंने सुसमाचार के मार्ग पर चलना शुरू किया था, उसका परित्याग करना उनके लिए कितना खतरनाक था। वास्तव में औपचारिकतावाद का शिकार होने का खतरा जो हमें पाखंडता की ओर ले चलती है, जिसके बारे में हमने पिछली बार जिक्र किया। वे औपचारिकता का शिकार होते और यीशु ख्रिस्त में प्राप्त अपने नए सम्मान को अस्वीकार करते हैं कि वे यीशु ख्रिस्त में मुक्त किए गए हैं। संत पौलुस अपने जीवन और बुलाहट की चर्चा करते हैं, कैसे ईश्वर की कृपा ने उसके जीवन को बदल डाला और वह अपने को सुसमाचार प्रचार हेतु पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं। इस परिवेश में वे गलातियों को सीधे तौर पर चुनाव करने की चुनौती प्रदान करते हैं। संत पापा ने कहा कि संत पौलुस गलातियों को जिस तरह से संबोधित करते हैं वह निश्चित तौर पर अपने में विनम्र नहीं है। दूसरे पत्रों में हम संबोधन जैसे कि भाइयों या अति प्रिय मित्रों को पाते हैं, लेकिन यहाँ वैसे नहीं है क्योंकि वे क्रोधित हैं। वे उन्हें साधारण रूप में गलातियों कहकर संबोधित करते हैं और दो परिस्थितियों में तो वे उन्हें मूर्ख भी कहते हैं जो विनम्रता व्यक्त नहीं करती, जिसका अर्थ हम कई रूपों में लगा सकते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे ज्ञानी नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे उत्साह में मिले ईश्वर पर विश्वास की कृपा को खोने का तनिक भी एहसास नहीं करते हैं। वे मूर्ख हैं क्योंकि वे अनमोल निधि ईश्वर से मिली नवीन विश्वास को खोने की जोखिम में हैं। प्रेरित का आश्चर्य और दुख अपने में स्पष्ट है। कटुता के बिना वे ख्रिस्तियों को अपने प्रथम प्रवचन की याद करने को कहते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने उन्हें एक नई अप्रत्याशित स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना पेश की। प्रेरित गलातियों के अंतःकरण को झकझोरने हेतु सवाल पूछते हैं। वे अलंकारिक प्रश्न हैं क्योंकि गलातियों का समुदाय इस बात से वाकिफ है कि ख्रिस्त पर उनका विश्वास सुसमाचार घोषणा के फलस्वरूप मिली कृपा का प्रतिफल है। हम यहाँ उनके ख्रिस्तीय बुलाहट की शुरुआत को देखते हैं।
La parola che avevano ascoltato da Paolo si concentrava sull'amore di Dio manifestatosi pienamente nella morte e resurrezione di Gesù.
संत पौलुस के द्वारा सुनाए गए वचनों का केंद्र बिंदु ईश्वर का प्रेम था, जो पूर्ण रूपेण यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान में व्यक्त हुआ। पौलुस को उससे अधिक ठोस अभिव्यक्ति नहीं मिल सकती थी, जो उसने शायद अपने प्रवचन में कई बार दोहराया, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि ख्रिस्त मुझ में जीवित हैं। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। संत पौलुस यीशु ख्रिस्त के क्रूस स्मरण को छोड़कर और किसी दूसरी बातों को जानने की चाह नहीं रखते हैं। गलातियों को दूसरी अन्य बातों पर विचलित होने के बदले इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। संक्षेप में, संत पौलुस ख्रिस्तियों को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि वे उन बातों पर ध्यान दें जो खतरे में हैं, जिससे वे संहिता के अनुपालन करने की द्विधा में ना पड़े, क्योंकि नए प्रचारकों ने जो गलाती समुदाय आए थे उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें वापस जाते हुए शिक्षाओं का भी पालन करना होगा, जो मसीह के पहले पूर्णता की ओर ले जाती है, जो मुक्ति की आवश्यकता है। संत पापा ने कहा कि इसके अलावे गलाती इस बात को समझते थे कि प्रेरित किन बातों की ओर उनका ध्यान खींच रहे हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर अपने समुदाय में पवित्र आत्मा के कार्यों का अनुभव किया था, जैसे कि दूसरी कलीसियाओं के साथ हुआ था। करुणा और अन्य दूसरी कृपाओं की अभिव्यक्ति उनके बीच भी हुई थी। जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने पवित्र आत्मा के नवीन फलों का जिक्र करते हुए उत्तर दिया, जिसका उन्होंने अनुभव किया था। उनके विश्वास की शुरुआत ईश्वर से हुई थी, न कि मनुष्यों से। पवित्र आत्मा उनके अनुभवों के स्रोत थे। ईश्वर के कार्यों की अवहेलना करते हुए अपने को प्रस्तुत करना उनकी मूर्खता थी।
La santità viene dallo Spirito Santo.
पवित्रता हमारे लिए पवित्र आत्मा से आती है, जो यीशु ख्रिस्त में हमें मुफ्त में मिला है, जिसके द्वारा हमारा न्याय होता है। संत पापा ने कहा कि इस तरह संत पौलुस हमें विश्वास पर चिंतन करने का निमंत्रण देते हैं, कि हम अपने विश्वास को कैसे जीते हैं। क्या ईश्वर का प्रेम, जो क्रूसित हुआ और जी उठा, हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, जहां से हमारे लिए मुक्ति आती है, या हमारी अंतरात्मा धार्मिकता के कर्म कांडों की गुलाम है। हम अपने विश्वास को कैसे जीते हैं? क्या हम यीशु में मिली नवीनता रूपी सुंदर निधि से संयुक्त हैं, या कुछ क्षणिक चीजों की कामना करते हैं, जो आंतरिक रूप में हमें खालीपन का एहसास दिलाती है? दैनिक जीवन की क्षणिक चीजें हमारे द्वार पर दस्तक देती हैं, लेकिन यह एक दुखदायी मोह है, जो हमारे जीवन को छिछला बनाती और हमें सच्ची चीजों पर चिंतन करने में बाधा उत्पन्न करती है। संत पापा ने कहा,
Fratelli e sorelle, manteniamo comunque ferma la certezza che anche quando siamo tentati di allontanarci, Dio continua ancora a elargire i suoi doni.
हम इस बात को निश्चित रूप से जान लें, यद्यपि हम ईश्वर से दूर चले जाते, फिर भी ईश्वर हमें निरंतर अपने उपहारों से भरते रहते हैं। इतिहास में और आज भी गलातियों के साथ हुई घटनाएं घटित होती हैं। आज भी कुछ लोग हमारे कानों को यह कहते हुए गर्म करते हैं, धार्मिकता इन नियमों में है, इन सारी चीजों में आपको यह करना, ऐसा करना है, और वे हमें कठोर धार्मिकता प्रदान करते हैं। वह कठोरता जो हमारे बीच से पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता को दूर कर देती है, जिसे यीशु मुक्ति के रूप में हमें देते हैं। आप ऐसी कठोर बातों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि हर कठोरता के पीछे कुछ खराब चीजें हैं। वहां हम ईश्वर की आत्मा को नहीं पाते हैं, और यही कारण है यह पत्र हमें कट्टरपंथी प्रस्तावों को नहीं सुनने में मदद करेगा, जो हमारी आध्यात्मिक जीवन को पीछे की ओर ले जाती है। वहीं यह हमें यीशु के पुनरुत्थान की बुलाहट में आगे ले चलता है। प्रेरित गलातियों को इस बात को दोहराते हुए याद दिलाते हैं कि पिता ईश्वर आप लोगों को आत्मा प्रदान करते और चमत्कार करते हैं। संत पौलुस इसे वर्तमान काल में व्यक्त करते हैं। वे यह नहीं कहते कि पिता ने आत्मा को बहुतायत में दिया है या कार्य किया, वरन देते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि कठिनाइयों के बावजूद हम उनके कार्यों को कर सकें, यहाँ तक कि अपने पापों के बावजूद।
Dio non ci abbandona, ma rimane con noi col suo amore misericordioso.
ईश्वर हमें नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वे अपने करुणामय प्रेम में हमारे साथ रहते हैं। वे अपने भले कार्यों के माध्यम सदैव हमारे साथ रहते हैं। वे उस पिता की भांति हैं, जो रोज दिन छत पर चढ़कर अपने बेटे के लौटने की बाट जोहते हैं। पिता का प्रेम हमारे लिए कभी खत्म नहीं होता है। हम इस विवेक हेतु निवेदन करें कि हम इस सच्चाई को जान पाएं और उन कट्टरपंथियों को दूर करें जो हमें कृत्रिम त्यागमय जीवन को हमारे लिए लाते हैं, जो हमें मसीह के पुनरुत्थान से दूर करता है। तपस्या जरूरी है, लेकिन यह विवेकी है, बनावटी नहीं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Eterni nostrum in nomine Domini,
qui feci cielum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 1 सितंबर के ट्वीट संदेश में चिंतन करने हेतु प्रेरित किया कि हमारे जीवन के केंद्र में क्या है। उन्होंने 1 सितंबर के ट्वीट संदेश में कहा, संत पॉलस हमें भी चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम विश्वास को किस तरह जीते हैं। क्या क्रूसित एवं पुनर्जीवित ख्रिस्त का प्रेम हमारे जीवन के केंद्र में मुक्ति के स्रोत के रूप में है, अथवा क्या हम अपने अंतःकरण को बचाने के लिए कुछ धार्मिक औपचारिकताओं से संतुष्ट हैं? संत पापा फ्रांसिस ने स्विट्जरलैंड के फादर कोलंबन रिएक्लिन ओएसबी को वैटिकन में परमधाम पीठ के स्विस गार्ड के लिए चैपलिन नियुक्त किया। आज सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस है। इसी के साथ सृष्टि का मौसम शुरू होता है। यह 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। यह चंगाई एवं आशा के लिए ख्रिस्त एकता की परंपरा है। सिसिलिया डेल ओग्लियो, जो लाउदातो सी आंदोलन के यूरोपीय कार्यक्रमों के सहयोगी निदेशक हैं, उन्होंने 2021 सृष्टि के मौसम के अर्थ को संवाद के मिशन आतिथ्य के रूप में दूसरों के लिए एक आश्रय बनाने की प्रतिबद्धता के रूप में प्रकट किया है। संत पापा फ्रांसिस ने रेडियो कोप को एक साक्षात्कार दिया है। कार्लोस हेर्रा को दिए साक्षात्कार में उन्होंने पहली बार जुलाई में हुए सर्जरी का जिक्र किया है। उन्होंने अफगानिस्तान, चीन, इच्छा मृत्यु और परमधाम पीठ रोमी कार्यालय में सुधार आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला है। संत पापा फ्रांसिस ने रेडियो कोप को दिए एक साक्षात्कार में अपने ऑपरेशन अफगानिस्तान, चीन, इच्छा मृत्यु और परमधाम पीठ रोमी कार्यालय में सुधार आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। पिछले सप्ताहांत में पोप फ्रांसिस ने स्पैनिश धर्माध्यक्ष सम्मेलन के प्रसारक रेडियो कोप को जो साक्षात्कार दिया वह 1.5 घंटे का है। 4 जुलाई को संत पापा फ्रांसिस के पेट का ऑपरेशन रोम के जेमिली अस्पताल में हुआ था। वैटिकन के संत मार्था में कार्लोस के साथ एक साक्षात्कार में संत पापा ने सर्जरी के बाद की स्थिति के बारे बतलाया। पूछे जाने पर कि आप कैसे हैं, संत पापा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि उनके जीवन को बचाना वैटिकन में स्वास्थ्य सेवा में 30 साल के अनुभव के साथ एक नर्स का है, जिन्होंने एंटीबायोटिक दवाओं के साथ चिकित्सा कराने के विपरीत राय के बावजूद ऑपरेशन कराने पर जोर दिया। ऑपरेशन के बाद संत पापा ने प्रकट किया कि उनके पेट में आंत का 33 सेंटीमीटर हिस्सा कम हो गया है, किंतु इसने उन्हें पूरी तरह सामान्य जीवन जीने से नहीं रोका। मैं सब कुछ खा सकता हूँ और अपने व्यस्त कार्यक्रमों को जारी रख सकता हूँ, जिसमें स्लोवाकिया और हंगरी में 12 से 15 सितंबर के बीच प्रेरित यात्रा भी शामिल है। अपने स्वास्थ्य के बारे आगे बतलाते हुए संत पापा ने मीडिया द्वारा पोप के पद से उनके संभावित इस्तीफे के अटकलों से स्पष्ट रूप से इनकार किया। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा विचार कभी मन में नहीं लाया। मैं नहीं जानता कि ऐसा विचार उन्होंने कहां से पाया कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं। उन्होंने विडम्बना के साथ कहा कि इस समाचार के बारे वे बहुत बाद में जाने, क्योंकि वे समाचार पत्र नहीं पढ़ते और न ही टेलीविजन देखते हैं। मैं बहुत बाद में जाना कि मेरी इस्तीफा होने वाली थी। उन्होंने कहा, जब जब पोप बीमार पड़ते हैं, तब तब कॉन्क्लेव की हवा और तूफान बहने लगती है। संत पापा ने साक्षात्कार में अफगानिस्तान के संकट के बारे में कई बातें कही। उन्होंने इससे एक कठिन परिस्थिति कहा, कूटनैतिक स्तर पर अफगानिस्तान के लोगों के बीच हिंसा को कम करने के लिए परमधम पीठ के प्रयास पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि वैटिकन राज्य सचिव के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं निश्चिंत हूँ कि यह मदद कर रहा है अथवा कम से कम कुछ सहायता जरूर पहुंचा रहा है। उन्होंने वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन के बारे कहा कि वे एक उत्तम राजनयिक हैं। उसके बाद संत पापा ने मॉस्को में जर्मन चांसलर अंजेला मार्केल के 20 अगस्त के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि लोगों की परंपराओं की अनदेखी करते हुए बाहर से हस्तक्षेप करने और दूसरे देशों में लोकतंत्र का निर्माण करने की गैर जिम्मेदारपूर्ण नीति को समाप्त करना आवश्यक है। उन्होंने 20 साल के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को वैध कहा, भले ही उन्होंने कहा कि जहां तक मैं देख सकता हूं, सभी घटनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। मुझे नहीं पता कि क्या समाधान हो पाएगा अथवा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से नए अधिकारियों की ओर से बहुत अधिक धोखा हुआ है। मैं इससे छल कहूं या बहुत भोलापन, मुझे समझ नहीं आता। संत इजिदियो समुदाय के संस्थापक अंद्रिया रिकार्डी ने अफगानिस्तान के लिए संत पापा फ्रांसिस की अपील पर टिप्पणी की तथा प्रार्थना एवं उपवास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उसे आशा का माध्यम कहा। अफगानिस्तान में हुई त्रासदी के आलोक में संत पापा फ्रांसिस एक बार फिर दुनिया भर के विश्वासियों से प्रार्थना के लिए एक साथ आने और उपवास करने पर जोर दे रहे हैं। यह अपील उन्होंने पिछले रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान की थी, जिसको उन्होंने अपने ट्वीट में भी कई बार दोहराया है। संत पापा ने कहा था, मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रार्थना और उपवास तेज करें। प्रार्थना और उपवास एवं प्रार्थना और प्रायश्चित, अभी ही इसे करने का समय है। अपनी अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा था, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, प्रार्थना और उपवास को तेज करें, प्रभु से करुणा और क्षमा की याचना करें। वैटिकन न्यूज के पत्रकार सल्वातोरे चेरनेत्सियो के साथ एक साक्षात्कार में संत इजिदियो समुदाय के संस्थापक अंद्रिया रिकार्डी ने युद्धग्रस्त देश के लिए प्रार्थना एवं उपवास हेतु संत पापा की अपील पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हम शांति के लिए बहुत कम प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना शक्ति है। अंद्रिया ने गौर किया कि इस प्रार्थना और उपवास मैराथन को जारी करने की वास्तव में तत्काल आवश्यकता है, जब दूर के युद्धों का सामना करना पड़ता है और ऐसी परिस्थिति से जूझना पड़ता है जिन्हें हम नहीं जानते कि कैसे हल किया जाए। तब ऐसा लगता है कि मानो हम कुछ नहीं कर सकते और नपुंसकता की भावना पैदा होती है। उन्होंने जोर दिया कि इस नपुंसकता से उदासीनता आती है। अंद्रिया ने गौर किया कि संत पापा ने अक्सर उदासीनता के वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने बतलाया कि हमारी उदासीनता वहां से आती है जहां हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, जबकि मैं मानता हूं कि इस विश्व में हर पुरुष और हर स्त्री कुछ न कुछ जरूर कर सकता है। यदि छोटे दल आतंक बो सकते हैं, तो छोटे दल शांति भी बो सकते हैं, और वे ऐसा प्रार्थना एवं उपवास के द्वारा कर सकते हैं जो दैनिक जीवन से अनासक्त होना भी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।